ओम शांति। ये मुरली है 3 अप्रैल 1994, 3 अप्रैल 1994। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, तंदुरुस्ती। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत। संतुष्टता की स्थिति द्वारा परिस्थितियों को परिवर्तन करने की विधि बताने वाले बाप दादा अपने संतोषी बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाले वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को भी प्रिय है ही। तो ऐसे होना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होगी जैसे कि पपेट शो, जैसे पपेट शो देखते हो ना, कठपुतली। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है, पपेट शो तो पुराना हो गया। अभी क्या है,
कार्टून।
अभी कार्टून शो है, अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है, कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन कार्टून की स्टोरी रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो क्या एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है। क्या समझो, बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है। वाह, पपेट शो चल रहा है तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही लगता है ना। तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है। वो कौन सा शो होता है जो हमेशा चलते रहते हैं 24 घंटे, क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं हर समय चलते रहते हैं, सुबह का शो, इवनिंग शो, रात का शो, कोई शब्द है उसके लिए। मैटर, हाँ, अच्छा। जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ, ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। तो क्या देखा आज बाबा ने, आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं को व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। कौन सा दरबार है? ये ईश्वरीय दरबार, वहाँ होगा राज दरबार। वो दरबार बड़ा या ये दरबार बड़ा? क्यों? वहां तो राजे महाराजे होंगे साथ साथ। अच्छा, यहाँ परमात्मा का साथ है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय है और सर्व को भी प्रिय है, और तो बाप को भी प्रिय है। दो खिड़कियां हैं, एक संतोष की खिड़की, एक असंतोष की खिड़की। असंतोष की खिड़की से झांको तो सामने, असंतोष की खिड़की नर्क की ओर खुलती है, संतोष की खिड़की स्वर्ग की ओर खुलती है। तो किससे दोस्ती करना है, संतोष से या असंतोष से? असंतोष से बहुत लंबा समय दोस्ती की, क्या किया असंतोष ने हमारा? बहुत दौड़ाया, बहुत भगाया। संतोष कहता है इतना ही, असंतोष कहता है किसने दौड़ाया? मैंने कहा असंतोष ने दौड़ाया। असंतोष कहता है इतना ही, संतोष कहता है जो है वही ठीक है। संतोष कहता है बस ये जो है वही सार्थक है, जो है वही सत्य है, जो है उसे पाकर ही धन्य भागी हूँ। असंतोष कहता है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। असंतुष्ट व्यक्ति जब गरीब है तो झोपड़ी में भी असंतोष है उसको, जब महलों में जाता है तभी महलों में भी असंतुष्ट है। पहले गरीबी में असंतुष्ट था, अभी अमीरी में असंतुष्ट है। पुरुषार्थ की बात कुछ और है, यहाँ संसार की इच्छाएं, प्राप्तियां, वैभव, व्यक्ति, संसार की चीजों के प्रति। परंतु जो संतुष्ट है वो झोपड़ी में भी है, परंतु सम्राटों को उससे ईर्ष्या होती है। फटेहाल रास्ते से चल रहा है, परंतु उसके सामने सम्राटों की शोभा यात्राएं भी फीकी पड़ जाती है। तो संतुष्ट आत्माएं, संतुष्ट सततम योगी, गीता में लिखा है हे अर्जुन तुम्हें योगी बनना है, क्योंकि योगी ही संतुष्ट है। या तो जो संतुष्ट है वही योगी है। तो जो संतुष्ट आत्माएं हैं उन्हें वो स्वयं की भी प्रिय है, सर्व की प्रिय है, और बाप की भी प्रिय है। तो ऐसे हो ना, क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है, अप्राप्ति कोई है ही नहीं, प्राप्तियां इच्छुक है कि मुझे कार्य में लगाओ, प्राप्ति स्वयं इच्छुक है। वैभव की खान एवर रेडी है सेवा करने के लिए, अभी वहां नहीं, अभी सतयुग में नहीं। तो ऐसे तो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। तो व्यक्ति संतुष्ट होने के बाद दौड़ समाप्त हो जाती है, भाग जो रहे हैं ना कुछ पाने के लिए, जो मिला नहीं पर पा रहे वो दौड़ समाप्त होती है। तो वहां संतुष्टता कैसी है? थोपी हुई संतुष्टता नहीं है, स्वतः है। सांत्वना नहीं है संतुष्टता, लोमड़ी की तरह नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है, और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। तो संतुष्ट आत्माओं की इतनी शक्ति है कि दूसरों को भी संतुष्ट कर देते। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता, और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, और एक असंतुष्टता अनेक असंतुष्टताओं को खींचती है अपनी तरफ। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति को एक चीज नहीं है उसके प्रति दुखी नहीं होता है, वो बहुत चीजों के प्रति दुखी होता है। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और असंतोष का स्वभाव ये है कि जो चाहिए वो मिलने के बाद तुरंत ही वो व्यर्थ हो जाता है, फिर दूसरा चाहिए। ये उसका अद्भुत स्वभाव है कि जो मिला नहीं वो पा लिया। दो प्रकार से लोग दुखी है, एक तो वो कि कुछ चाहिए पर मिल नहीं रहा है, दूसरे वो जो चाहिए था वो मिल गया, अब इसके लिए दुखी है। पर दोनों तरफ से दुखी है क्योंकि पा लेने के बाद तुरंत वो वस्तु व्यर्थ हो जाती है। जो व्यक्ति चाहिए यही व्यक्ति चाहिए, बस जिससे प्यार है बस ये चाहिए, पर पाते ही व्यर्थ हो जाता है, फिर और कुछ चाहिए, फिर वो पा लिया फिर वो व्यर्थ हो जाता है, फिर और कुछ चाहिए, फिर और कुछ चाहिए, ये और कुछ चाहिए। ये दौड़ाता है असंतोष, भगाता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ।
चाहिए का कोई लिमिट नहीं है,
चाहिए की कोई लिमिट ही नहीं है, फिर भी व्यक्ति उससे छूट नहीं पाते। संगम युग में विशेष बाप दादा की देन है संतुष्टता। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थितियां बदल जाएगी परंतु संतुष्टता नहीं बदलेगी। परिस्थिति परिस्थिति है ही बदलने वाली, पराई स्थिति है, उसमें एक फ्लो है, प्रवाह है, रुकने वाली नहीं है, बदल जाएगी सब कुछ। लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है, आगे बढ़ने वाली है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होगी जैसे पपेट शो देखते हो ना, होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है, वो आजकल का जो फैशन है कार्टून शो, अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है बिल्ली भी है लेकिन होता क्या है, कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन कार्टून की स्टोरी रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे, क्या होगा? केवल उसमें इतना फर्क है कि वो कार्टून शो में दो लोगों की लड़ाई होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ, वो दीवार में जाके ऐसे फ्लैट हो जाता है, कभी उसके ऊपर से गाड़ी चली जाती है तो फिर फ्लैट हो जाता है, फिर उठता है। यहाँ वो हम रहेंगे बस, अब आनंद लो उसका, अपने को ही दर्शक बन के देखना है। तो परेशान होंगे कि मनोरंजन शो देखना तो अच्छा ही है ना, तो ये कौन सा शो है, माया का, विकारों का, प्रकृति का भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। साक्षी होकर, संतुष्ट होकर जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है वह सत्य है, जो हो रहा है सारे हिसाब यहाँ चुप्त हो रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए नहीं है, हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहे उसके लिए संकल्प है। ड्रामा अन्यायकारी है, कल्याणकारी है, हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा, गुप्त है, पोशीदा, हिडन है वहां पर कहीं ना कहीं, कैसे भी देखो, कैसे भी करके देखो, क्योंकि वो स्थिति साक्षी स्थिति रहेगी और साक्षी स्थिति हमें अपने ही दुखों से ऊपर उठा देती है। नहीं तो व्यक्ति अपने दुख दर्द पीड़ा को भूल कहां सकता है। जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूं, संतोषी आत्मा हूं, यह है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना कि परेशान होना अच्छा लगता है, सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी प्राप्ति एक बाप से अनुभव कर सकते हो। ये एक ही समय है जिसमें सर्व प्राप्तियां एक बाप से अनुभव कर सकते हो, परंतु फिर एक बाप के प्रति ही प्यार चाहिए। तुम्हारे पास, किसी ने कहा है, तुम्हारे पास दिल एक है तो एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रह सकती है। किससे मोहब्बत करना है? एक महबूब से, नहीं रह सकती। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर, गॉड एंड मैमन। दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते तुम एक साथ, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। संगम युग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। एक ये बाबा ने कहा, वहां पर सतयुग में तुम्हारे पास तुम किससे खेलोगे और यहाँ किससे खेलते हो? वहां रत्नों से खेलोगे एक, वहां खिलौनों से खेलोगे दो, वहां एक दूसरों के साथ खेलोगे देवता है, यहाँ किससे खेलते हो? अविनाशी खिलौना तुम्हें प्राप्त है जो ना कभी टूटता है ना कभी फूटता है, ना कोई नुकसान पहुंचाता है। ऐसा खिलौना तुम्हें मिला हुआ है, जब जो चाहे वो संबंध उससे जोड़ सकते हो। तो संगम पर बाबा ने ऑफर किया है इब्राहिम को खिलौने के रूप में। कंडीशन तो बहुत रहेगी ना, बड़ा खिलौना मिला है। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगता, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है? पीछे बैठे हुए क्या समझते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सर्व संबंध उससे जोड़ सकते हो, जिसको जो संबंध पसंद है, प्रिय है। सर्व संबंध निभाने के लिए वो इस समय बंधा हुआ है। तुमने प्यार से बाप को बांधा है, बंधने वाला बड़ा या बांधने वाले बड़े? कभी अव्यक्त बाबा ने पूछा है, कौन बड़ा है चंद्रशेखर भाई? एक है जिन्होंने बंधन में उसको बंधक बनाया है, दूसरा है स्वयं बंध रहा है, तो कौन बड़ा है? तुमने अपने स्नेह की डोरी से बाप को बांधा है। तो
भक्ति में उखली में बांध के रखा
था। महाराष्ट्र में एक संत है, उसका एक भजन है, एक महिला संत, धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधुनिया दोर। पंढरी का मतलब वो कृष्ण के लिए कह रही है, उसके गले में रस्सी बांध कर मैंने उसे पकड़ा है, अब देखती हूँ कहाँ भागता है। सर्व संबंध, हमारा गीत भी है ना, तू मात पिता बन साजन सखा बन। वो प्यार लुटा था दुनिया से न्यारा, कौन सा गीत है देवेंद्र भाई? अच्छा गीत है। क्या बात कर रहे हो, कौन सा है आनंद भाई? तू मात पिता बन साजन सखा बन, वो प्यार लुटाता दुनिया से न्यारा। अच्छा गीत है ना। दिल के मंदिर में तुमको बिठा कर दीदार करूं मैं, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। बाबा ये कितने गीत हम वक्त। उसमें फर्स्ट लाइन तो सबसे अच्छी है, मौजों के दिन मिलन की ये रातें, बीते कभी ना थम जाए हरदम। मौजों के दिन मिलन की ये रातें, बीते कभी ना थम जाए हरदम। गर आज हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने। कितना नशा है गीत में। गर आज हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका वो तख्त फीका, तुम जो हमारे सब कुछ हमारा, बदले में तेरे कुछ और ना लू, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। बाबा ये कितने प्यारे नजारे। क्या गीत है, कितना दर्द है। और जिस माता ने ये गाया है उसमें उसमें आवाज में बीच में उसका जैसे कि रोने लग जा रही है ऐसे लगता है, उस बीच में एक लाइन ऐसी आती है कि जिसका आवाज एकदम जैसे अभी रोने ही वाली है। मूर्ति माता करके कोई माता है, इसने गाया है ये गीत 91-92 में ये बने हुए गीत है। दर्द है उसमें बहुत। हाँ सतयुग की इतनी सारी हमने उस दिन लिस्ट गिनाई ना, ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा, पर बाप नहीं होगा तो सब क्या, उसके आगे सब कुछ फीका है।
मंदर भाई क्या गीत है?
किसी को बाप अच्छा लगता है तो किसी को फ्रेंड अच्छा लगता है, लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है, सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हो, आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, भले पता रहे। बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं, नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी है, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े लेकिन छोटे समान बाप है, इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है हद का नहीं रखना। देखो कितनी कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी ऑथोरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया है। सर्व का सदगतिदाता ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बाप तुमको पढ़ाता है। कल था ना तुमको नशा रहना चाहिए इस बात का, कौन पढ़ाता है, परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष को समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। अभी बाबा आ गए, संतुष्टता के याद आ रहे, संपत्ति मिली है तुमको। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति नहीं है, अगर सर्व शक्तियों की संपत्ति नहीं है, अगर श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां है, संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ जाता है और बाप का ध्यान पीछे वालों की तरफ जाता है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाए हुए। इसको एक कभी 94 की मुरली एक भाई ने इसको ही पकड़ा था। हमेशा वो कहता था मैं हमेशा पीछे बैठता हूँ, क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था ये वाक्य, यही वाक्य शायद उसने पकड़ा हुआ है। क्योंकि बाबा ने कहा है सामने वाले बाप को देखते और बाप पीछे वालों को देखते। पीछे बैठना फिर भी ठीक है, परंतु पीछे बैठ के अगर कुछ दूसरी व्यवस्थाएं कर रखी है नींद की वगैरह तो वो दूसरी बात है। तो साकार वतन में तो साकार की बातें होती है। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हो। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर है, अर्थात मालिक है ना। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणि। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। तो पहला था संपत्ति में, पहला था संबंध, दूसरा संतुष्ट किसमें? संपत्ति में। अभी संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? कल तो कहा था आप डॉक्टर हो, रूहानी सर्जन, मास्टर सर्जन। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं है। शरीर की तंदुरुस्तता की तो कोई बात नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं है इधर। उससे बाबा को कोई स्थूल चीज से कभी लेना देना नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन जन के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। इसके लिए शरीर को जो होना है होने दो। जैसे हमारे संजय भाई, कोई तकलीफ, कम से कम एक तकलीफ तो बताओ। आशीष भाई क्या बोला कल? है ही नहीं तकलीफ, ये लोगों को है। जो यहाँ लेके आ रहे हैं इनको तकलीफ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कम से कम एक तो बताओ, एक भी नहीं है। बाबा साथ है तो कहे की तकलीफ। क्या स्थिति है, ऐसी पावरफुल स्थिति। तो इस समय की आत्मा की तंदुरुस्ती जन जन के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। अगर बीमारी में कोई अचल अडोल रहता है तो वो दिखाता है क्या साधना की थी आत्मा ने। क्योंकि बीमारी में व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है, बीमारी में इरिटेट हो जाता है उसका नेचर, बीमारी में वो ज्ञान योग सब भूल जाता है। बीमारी आते ही, और जितनी बड़ी बीमारी उतना ही ज्ञान योग रफू चक्कर सब आ जाता है। संशय आता है, दुख होता है, लोगों की आवश्यकता पड़ती है, केयर चाहिए, प्रेम चाहिए, और वो थोड़ा भी कम मिला, थोड़ा भी मिल रहा है पर उसमें भी असंतुष्टता ढूंढते हैं। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बीमारी में कोई संतुष्ट रहे, बीमारी में किसी की अचल अडोल अवस्था रहे, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है संगम पर, बहुत बड़ी प्राप्ति। किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है, देह के प्रति भी कोई कंप्लेंट नहीं है, जो है वो ठीक है, बस अब इसको छोड़ना है और बच्चा बनना है। दुख इसी बात का है कि किसी से ना बात करने की इच्छा है, ना कुछ खाने की इच्छा है। इच्छा की बात चल रही है, खा सकना न सकना दूसरी बात है। इच्छा, आंतरिक इच्छा। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये नहीं। इस समय की आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है, लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते दिखाने दो प्रकृति को जो रूप दिखाना है। यह भी कार्टून शो है, बीमारियां भी कार्टून शो है। बीमारी आ जाए तो बाबा ने कभी कहा है उसको क्या करो, अगर तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उसका वेलकम करो, आओ भगत करो, तो वो खुशी खुशी विदा होगा। तो जब बीमारी आती है तो क्या कहो, वाह व्याधि वाह, क्या गुड़िया ड्राईफ्रूट समझना, क्या व्याधि है, ऐसी बीमारी वाह, बार बार जित तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्तिवान भव भी है, सर्व संबंध भव भी है, और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए है, संपत्ति मिली हुई है, संबंध मिले हुए है, और सेहत तंदुरुस्ती मिली हुई है। यहाँ पर तुम कौन सा फल खाते हो और वहाँ कौन सा फल खाओगे, संडे की मुरली है। यहाँ प्रत्यक्ष फल, यहाँ सर्व संबंधों के रस का फल, वहाँ कौन सा फल खाते हो, मिठास वाला, कोई पीते हो कोई खाते हो, परंतु यहाँ प्रत्यक्ष फल। कौन सा प्रत्यक्ष फल है, 10 प्रत्यक्ष फल बताओ। अतीन्द्रिय सुख का फल खाते हो, खुशी का फल खाते हो, संतुष्ट फल, संतुष्टता का फल, नशा कम ज्यादा प्राप्तियों का फल, दुआओं का फल, अति और वरदान मिलते हैं तुमके, वो भी एक फल ही है। परिवार भी फल के रूप में मिला। निश्चिंतता सबसे बड़ा फल है ब्राह्मण जीवन में, कोई चिंता नहीं, आलू के भाव बढ़ रहे हैं या तेल के भाव बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो जो बढ़ रहे सहयोग, सबका सहयोग, सबसे स्नेह, परमात्मा प्रेम, ये प्रत्यक्ष फल है। परमात्मा पढ़ाई, ये भी प्रत्यक्ष फल है। पालना, वहां पर दासियों के हाथ से पलोगे, यहाँ परमात्मा के हाथ से पल रहे। वहां पर प्रकृति उठाएगी, यहाँ प्रकृति पति उठा रहा है। वहां एक कालदर्शी हो गए, यहाँ त्रिकालदर्शी हो। वहां एक नेत्री, यहाँ त्रिनेत्री। वहाँ एक लोक की सैर करते हो, यहाँ तीन लोक की सैर करते हो। वहाँ केवल सूक्ष्म, वहाँ निद्रा लोक में जाते हो, यहाँ सूक्ष्म लोक में जाते हो। वहाँ रत्न जड़ित झूला है, यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख का झूला, प्राप्तियों का झूला, खुशी का झूला, बाप के गोद में झूलते हो, गोद का झूला है वो, सबसे बड़ा झूला है इधर। तो बोलो अब, वो बड़ा या ये बड़ा? हाँ, यहाँ तीन, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। लालच उधर का है पर जाना तो ये तीन वरदान, तो तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए, तो वरदानों को समय पे कार्य लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहता है। काम में लगाने से कायम, ये है अलंकारिक भाषा, कवि और साहित्यकार ऐसी भाषा लिखते हैं। ये लिख नहीं रहा है, ये बोल रहा है, ये स्पोकन कविता है स्ट्रेट। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का ही है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है, फलीभूत करना है वरदान। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हैं वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। एक वरदान दूसरे वरदानों को खींच के लाएगा, वरदानों के फल स्वरूप बन जाओ। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हो, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदान को जितना समय पर कार्य में लगाओगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला है ना? अच्छा, ओम शांति।